शांति, ओम शांति। भक्ति मार्ग में हम भगवान को कहते थे, हे भगवान, हम पर रहम करो, कृपा करो, दया करो, क्या क्या यही तो कहते थे ना भगवान को। अब भगवान क्या कहते हैं, तुम अपने ऊपर रहम करो, तुम ही करो अपने ऊपर, तुम ही अपने ऊपर कृपा करो, दया करो। कैसे करो उसके लिए मैं श्रीमत देता हूँ, मैं जो श्रीमत देता हूँ उस पर चलो, तो ऑटोमेटिकली स्वयं पर आप दया कर सकेंगे, रहम कर सकेंगे, कृपा कर सकेंगे, अपने आप को आशीर्वाद भी दे सकेंगे, बहुत कुछ कर सकेंगे। तो मांगो मत ये सब चीज़ें, मैं तुमको श्रीमत देता हूँ, पर श्रीमत पर चलना ये तुम्हारा काम है ना। अगर हम श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो कैसे बाबा हम पर रहम करेंगे या कृपा करेंगे। ऐसे तो नहीं हम पाप करते रहें और भगवान को कहें रहम करो, हमारे तरफ से पाप होता रहे और ईश्वर को कहें रहम करो। भक्ति मार्ग में तो यही कहा ना कि हम तो पापी हैं, हम तो नीच है, हम तो ये है वो है, न जाने क्या क्या कहा, आप ही मुझ पर कृपा करो। परंतु बाबा कहते नीच बने क्यों, नीच क्यों बने, क्योंकि रावण की मत पर चले। पापी क्यों बने, क्योंकि रावण की मत पर चले। तो रावण की मत है उल्टी मत, और बाबा आकर के सुलटी मत देते हैं। तो आज की सारी मुरली ही है श्रीमत। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य, आज 18/7/2025 है। मीठे बच्चे, अपने ऊपर आपे ही रहम करो, मांगो नहीं बाबा से, अपने ऊपर आपे ही रहम करो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो। बाप की श्रीमत है, बहुत है श्रीमत, लेकिन आज बाबा ने श्रीमत क्या बाबा देते हैं, बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करो, ये भी एक बहुत बड़ी श्रीमत है। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ श्वास, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ, जो व्यर्थ अगर जाता है तो बाबा कहते फिर रहम नहीं कर रहे हो अपने ऊपर। बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करो, उल्टा कार्य करो। उल्टे कार्य करेंगे रावण की मत पर, फिर बाबा से रहम मांगते हैं। तो मीठे बच्चे, अपने ऊपर आपे ही रहम करो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो। बाप की श्रीमत है, बच्चे टाइम वेस्ट न करो, उल्टा कार्य करो। प्रश्न है, जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी। और सचमुच अगर तकदीर में नहीं है तो कोई पुरुषार्थ करेंगे भी नहीं, कहेंगे मेरे से नहीं होता है, मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तकदीर में नहीं है। पर तकदीर में है तो ये बहाने नहीं देगा। जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी। उत्तर, तकदीरवान बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे, बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे, कभी भी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे। कैसे करते हैं बेरहमी अपने ऊपर, रावण की मत पर चलकर ना, तो कभी भी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे। वो पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ कर स्वयं को राजाई के लायक बनाएंगे, खुद मेहनत करेंगे। ओम शांति। बच्चे बाप के सामने बैठे हैं तो जानते हैं कि हमारा बेहद का बाप है, किसके सामने बैठे हैं, बेहद के बाप के, और हमको बेहद का सुख देने के लिए श्रीमत दे रहे हैं, ये निश्चय होना चाहिए। उनके लिए ही गाया जाता है, भगवान के लिए क्या गाया जाता है, वो रहम दिल है, लिबरेटर है, बहुत महिमा करते हैं। तो बाप कहते हैं सिर्फ महिमा की भी बात नहीं, फिर महिमा करके फिर कहेंगे अब हमारे ऊपर रहम करो। तो बाबा कहते हैं सिर्फ महिमा की भी बात नहीं है, ये तो बाप का फर्ज है बच्चों को मत देना। लौकिक में भी बच्चों को बाप, लौकिक बाप भी मत देते हैं ना, बेटा ऐसा नहीं करो, हाँ बेटा ये करो, तो ये तो उनका फर्ज है। तो ये बाबा कहते हैं सिर्फ महिमा नहीं करो कि हाँ बाप हमको तो बहुत अच्छा सिखाते हैं, परंतु हम नहीं करेंगे तो केवल महिमा करने से क्या होगा। बाप कहते सिर्फ महिमा की भी बात नहीं, बाप का तो फर्ज है बच्चों को मत देना। बेहद का बाप भी मत देते हैं, ऊंच से ऊंच बाप है तो जरूर उनकी मत भी ऊंच से ऊंच होगी। मत लेने वाली तो आत्मा है, अच्छा व बुरा काम आत्मा ही करती है। इस समय दुनिया को किसकी मत मिल रही है, रावण की मत है ना, सब रावण की मत पर चल रहे हैं। इस समय दुनिया को मिलती है रावण की मत, तुम बच्चों को मिलती है राम की मत। रावण की मत से क्या हुआ, रावण की मत से बेरहम हो उल्टा काम करते हैं, अपने ऊपर ही बेरहम बन जाते हैं रावण की मत पर और उल्टा काम करते हैं। तो बाप मत देते हैं सुल्टा अच्छा कार्य करो, सुल्टा भी और अच्छा भी कार्य करो। सबसे अच्छा कार्य है अपने ऊपर रहम करो, सबसे अच्छा यही कार्य जो बाबा श्रीमत देते उस अनुसार चलो, ये हो अपने ऊपर ही रहम करना होगा, ये सुल्टा कार्य है। सबसे अच्छा कार्य अपने ऊपर रहम करो। तुम जानते हो हम आत्मा सतो प्रधान थी, बहुत सुखी थी, फिर रावण की मत मिलने से तुम तमो प्रधान बन गए हो। अब फिर बाप मत देते हैं कि एक तो बाप को याद करो, ये बाप की सबसे ऊंची मत है, एक तो मुझे याद करो और अपने ऊपर रहम करो, ये मत देते हैं। बाप रहम नहीं करते, मत देते हैं कैसे अपने ऊपर रहम करो। बाप रहम नहीं करते, बाप तो श्रीमत देते हैं ऐसे ऐसे करो, अपने ऊपर आप ही रहम करो, अपने को आत्मा समझ और अपने पतित पावन बाप को याद करो। हाँ ये सबसे बड़ी रहम है, सबसे बड़ा रहम बाबा का यही है जो श्रीमत देते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो तुम पावन बन जाएंगे। वो पतित पावन है तो पतित पावन को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। तो बाप राय देते हैं तुम पावन कैसे बनेंगे, बाप ही पतित को पावन बनाने वाला है, वही श्रीमत देते हैं। अगर उनकी मत पर नहीं चलते तो अपने ऊपर बेरहम होते हो, सीधी बात है। श्रीमत पर चलते हो तो अपने ऊपर रहम करते हो, श्रीमत पर नहीं चलते हो तो अपने ऊपर ही बेरहम बनते हो। बाप श्रीमत देते हैं बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, ये पाठ पक्का कर लो कि हम आत्मा हैं, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भल करो, फिर भी टाइम निकाल युक्ति रचो। काम करते आत्मा की बुद्धि बाप तरफ होनी चाहिए। जैसे हाँ बाबा किसका मिसाल देते हैं, काम करते भी बाबा की तरफ बुद्धि होनी चाहिए, तो बाबा कौन सा मिसाल देते हैं, आशिक माशुक का। वो विकार के लिए याद नहीं करते थे एक दो को, परंतु हाँ आशिक प्रेम सच्चा था, त्याग था उनका, तो इसीलिए बाबा कहते हैं जैसे आशिक माशुक भी काम तो करते हैं ना, दोनों एक दो के ऊपर आशिक होते हैं। यहाँ ऐसे नहीं है। हाँ तुम भक्ति मार्ग में भी याद करते हो, होना तो ऐसे चाहिए जैसे आशिक माशुक, लेकिन यहाँ इस प्रकार बाबा कहते बच्चे नहीं करते हैं। तुम भक्ति मार्ग में भी याद करते हो, कई कहते हैं कैसे याद करें परमात्मा को, आत्मा का परमात्मा का रूप क्या है जो याद करे, कैसे याद करे, क्योंकि रूप सामने आएगा ना, किसको याद कर रहे हैं। तो आशिक माशुक में तो दिखाते वो आशिक को वो माशुक का रूप सामने आ जाता था, और माशुक को वो अपनी आशिक का रूप सामने आ जाता था, विकार के लिए नहीं होता था। तो बाबा कहते हैं तो कई कहते कैसे याद करें, आत्मा का परमात्मा का रूप क्या है जो याद करें। हाँ वो समस्त निराकार है तो उनका तो कोई रूप ही नहीं है, तो कैसे याद करें। क्योंकि भक्ति मार्ग में तो गाया जाता है कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु ऐसे नहीं है। ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा भी है तो परमात्मा भी है, तो परंतु ऐसे नहीं है कि नाम रूप से न्यारा है। कहते भी हैं आत्मा के लिए क्या कहते हैं, भ्रकुटी के बीच में आत्मा स्टार मिसल है। फिर क्यों कहते हैं आत्मा क्या है, उनको देख नहीं सकते। हाँ देख नहीं सकते तो हम कैसे याद करें। वो तो कहते हैं कि भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, तो आत्मा सितारे की तरह है। वो तो है ही जानने की चीज़, देखने की चीज़ केवल नहीं है। चलो एक बार देख लिया पर समझ नहीं है तो उस देखने से भी लाभ तो होगा नहीं। वो तो है जानने की चीज़, आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। वो अति सूक्ष्म चीज है, फायर फ्लाई से भी महीन है, जुगनू है। यहाँ पहले गर्मी के दिनों में बहुत जुगनू होते थे, यहाँ पर झाड़ियाँ बहुत थी, नकीले की तरफ जाते बहुत झाड़ियाँ थी, तो जुगनू छोटे छोटे जुगनू को रात को जाते थे सैर करने, तो लाइट चमकती रहती थी, आजकल इतना नहीं है। तो बाबा कहते हैं फायर फ्लाई से भी महीन है आत्मा, वो लाइट चमकती है पर इन आँखों से नहीं दिखाई देती। शरीर से कैसे निकल जाती है पता भी नहीं पड़ता है। आत्मा शरीर से निकल गई बस आँखें बंद हो, बंद भी नहीं हो जाती, अगर खुली है तो खुली रह जाती है। हाँ फिर डॉक्टर कहेगा, फिर डॉक्टर आँखें बंद कर देगा, कहेगा ही इज़ नो मोर, गया। शरीर से कैसे निकल जाती है पता भी नहीं पड़ता। आत्मा है, साक्षात्कार होता है, आत्मा का दीदार हुआ सो क्या। चलो साक्षात्कार भी हुआ, एक एक छोटा से एक स्टार है, एक चिंगारी जैसे कुछ अगर है भी, तो बाबा कहते देखा भी तो क्या हुआ। वो तो स्टार मिसल सूक्ष्म है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, जैसे आत्मा वैसे परमात्मा भी सोल है, आत्मा है, परंतु परम आत्मा कहा जाता है, सुप्रीम सोल कहा जाता है। वो जन्म मरण में नहीं आता। जो जन्म मरण में नहीं आता उसी को कहेंगे परमात्मा। जो जन्म मरण में आती आत्मा उसको परमात्मा कभी नहीं कह सकते। तो जो वो जन्म मरण में नहीं आता, आत्मा को सुप्रीम तब कहा जाए जब जन्म मरण रहे तो। अगर वो जन्म मरण में आता है तो सुप्रीम नहीं कहेंगे। बाकी मुक्ति धाम में तो सबको पवित्र होकर जाना है, चाहे योग बल से चाहे सजा बल से, सबको पवित्र होकर जाना है। उनमें भी नंबरवार है, जिनका हीरो हीरोइन का पार्ट है हाँ वो तो परमात्मा के तो बहुत नज़दीक होंगे, जिनका हीरो हीरोइन का पार्ट है, आत्माएं तो सब नंबरवार है ही ना, आत्मा में नाटक में भी कोई बहुत पगार वाले कोई कम पगार वाले होते हैं। हीरो हीरोइन को तो कितना पैसा मिलता है, और जो ऐसे साइड एक्टर्स होंगे या बिल्कुल छोटे बाई प्लॉट्स, उनको कितना मिलेगा? हीरो हीरोइन की भेंट से तो भेंट में तो बहुत कम मिलेगा। तो बाबा कहते आत्माएं भी तो नंबर वार है ना, नाटक में भी कोई बहुत पगार वाले कोई कम पगार वाले, तनख्वाह मिलती है ना, तो किनको जास्ती तनख्वाह किसको कम तनख्वाह। लक्ष्मी नारायण की आत्मा को मनुष्य आत्माओं में सुप्रीम कहेंगे। आत्माओं में लक्ष्मी नारायण की आत्मा को सुप्रीम कहेंगे, लेकिन जो आत्माओं से परे परम आत्मा है वो तो है ही सुप्रीम। तो मनुष्यों में सुप्रीम लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण की आत्मा को मनुष्य आत्माओं से सुप्रीम कहेंगे। भल पवित्र तो सभी बनते हैं, सब आत्माएं पवित्र बनती है, फिर भी नंबर वार पार्ट है। योग बल से पवित्र बने और सजा बल से पवित्र बने, दोनों में अंतर तो होगा ना। भल पवित्र तो सभी बनते हैं, फिर भी नंबर वार पार्ट है। कोई महाराजा कोई दासी कोई प्रजा, तुम एक्टर्स हो जानते हो, इतने सब देवताएं नंबर वार है, सब देवताएं भी नंबर वार है। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो ऊंच ऊंच आत्मा बनेंगे, ऊंच पद पाएंगे। तो तुमको स्मृति आई है हमने 84 जन्म कैसे लिए। अब बाप के पास जाना है, बच्चों को यह खुशी भी है तो फख्र भी है, खुशी भी है तो नशा भी है कि अभी हमको बाप के पास जाना है। सब कहते हैं हम नर से नारायण विश्व के मालिक बनेंगे, फिर तो ऐसा पुरुषार्थ करना पड़े, केवल कहने से थोड़ी मुख मीठा होता है, फिर तो ऐसा पुरुषार्थ करना पड़े। पुरुषार्थ अनुसार नंबर वार पद पाते हैं, सबको नंबर वार पार्ट मिला हुआ है, ये ड्रामा बना बनाया है। अभी बाप तुमको श्रेष्ठ मत देते हैं, कैसे भी करके बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो, तो तुम सतो प्रधान बन जाओ। पापों का बोझा तो सिर पर बहुत है, कल भी बाबा ने कहा ना, पापों का बोझा सिर पर बहुत है, तो योग से ही विकर्म विनाश होंगे, तो आगे तो कोई और विकर्म नहीं करो, और फिर भविष्य के लिए जमा भी करना है, पुराना कर्जा भी चुकता करना है, नया कर्जा भी नहीं लेना है, पर जमा करना है ताकि भविष्य का पद मिल सके। तो 84 जन्मों का ही पूरा हिसाब अभी हमको फाइनल करना है। तो बाबा कहते हैं उनको कैसे भी करके यहाँ खलास करना है, तब आत्मा पवित्र बनेगी। तमो प्रधान भी तुम आत्मा बनी हो, तो सतो प्रधान भी आत्मा को बनना है। इस समय जास्ती इनसॉल्वेंट भारत है, ये खेल ही भारत पर है। ये उस समय तो बहुत इंसॉल्वेंट था, खाने को नहीं था, 60s में वो हालत थी भारत की। ये खेल ही भारत पर है, बाकी वो तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं। पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में सब तमो प्रधान बनते हैं, स्वर्ग के मालिक तो तुम बनते हो। जानते हो भारत बहुत ऊंच देश था, अभी कितना गरीब है, गरीब को ही सब मदद देते हैं, हर बात की भीख मांगता ही रहता है भारत, भारत मांगता ही रहता है। आगे तो बहुत अनाज यहाँ से जाता था, अभी गरीब बना है तो फिर रिटर्न सर्विस हो रही है। उस समय अमेरिका से भीख मांगी थी, हमको गेहूं दो गेहूं दो, भारत में गेहूं नहीं थी खाने के लिए, तो अमेरिका ने कौन सी गेहूं दी, लाल लाल गेहूं जो वहाँ जानवरों को खिलाते हैं, वो भारत को दी। उनको भी याद है कैसे हम रोटी खाते थे, एकदम लाल लाल रोटी, क्योंकि वो गेहूं ही ऐसी थी। तो बाबा कहते हैं अभी गरीब बने तो फिर रिटर्न सर्विस हो रही है, वो देते हैं, तो जो ले गए हैं वो उधार मिल रहा है। श्री कृष्ण और क्रिश्चियन राशि एक ही है, कृष्ण और क्रिश्चियन राशि एक ही है। क्रिश्चियन ने ही भारत को हब किया है। अब फिर ड्रामा अनुसार वो आपस में लड़ते हैं, क्रिश्चियंस ही आपस में, अमेरिका रशिया, उस समय तो इनका एकदम कोल्ड वॉर था, वो भी हथियार बनाए, एक दो के पूरे दुश्मन थे। तो बाबा कहते हैं अब फिर ड्रामा अनुसार वो आपस में लड़ते हैं और मक्खन तुम बच्चों को मिल जाता है। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण के मुख में मक्खन था, दिखाते ना, वो मिट्टी खाता था तो उनकी माँ ने कहा, यशोदा ने कहा मुँह खोलो, तो उसने तो यशोदा ने तो त्रिलोक देखा उसके मुख में, तो वास्तव में कोई मिट्टी खाना या मक्खन खाने की बात नहीं है, पर पूरा ही हाँ विश्व का मालिक बन जाता है। तो ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण के मुख में मक्खन था, ये तो शास्त्रों में लिख दिया है। सारी दुनिया श्री कृष्ण के हाथ में आती है, सारी दुनिया श्री कृष्ण के हाथ में आती है, सारे विश्व का तो मालिक बनते हो। तुम बच्चे जानते हो हम विश्व का मालिक बनते हैं तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे कदम कदम में पदम है। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं था, पूरी डिनास्टी थी ना, एक ने थोड़ी को इतना समय राज्य किया होगा, उनकी वंशावली थी जिन्होंने राज्य किया, डिनास्टी थी ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबके पांव में पदम होते हैं। वहाँ तो अनगिनत धन है, अनगिनत पैसे होते हैं, पैसे के लिए कोई पाप नहीं करते वहाँ, यहाँ तो पैसे के लिए कितना पाप होता है, तो वहाँ तो पैसे के लिए कोई पाप नहीं करते, अथाह धन होता है। अल्लाह अवल दीन का खेल दिखाते हैं ना, ठका करने से कारून का खजाना निकल आया, तो अल्लाह अवल दीन का खेल दिखाते हैं। अल्लाह जो अवल दीन, अवल माना पहला, दीन माना धर्म, तो अल्लाह पहला धर्म स्थापन करते हैं, तो इसलिए अलाउद्दीन कह दिया, पर अल्लाह अवल दीन, तो उसके पास कारून का खजाना था। तो बाबा कहते हैं अल्लाह जो अवल दीन अर्थात जो देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते हैं, सेकंड में साक्षात्कार हो जाता है, कारून का खजाना दिखाते हैं। मीरा श्री कृष्ण से साक्षात्कार में डांस करती थी, वो था भक्ति मार्ग। मीराबाई श्री कृष्ण के साथ डांस ही करती रहती थी, वो साक्षात्कार ही श्री कृष्ण का करती रहती थी और डांस करती रहती थी, अब वो था भक्ति मार्ग। यहाँ भक्ति मार्ग की बात नहीं, तुम तो वैकुंठ में प्रैक्टिकल में जाकर राज्य भाग्य करेंगे। मीराबाई तो प्रैक्टिकल में तो नहीं गई ना वैकुंठ में, वो तो अपने को ऐसे साक्षात्कार में देखती थी, मैं वैकुंठ में श्री कृष्ण के साथ हूँ, परंतु तुम बच्चे तो प्रैक्टिकल में वैकुंठ में जाकर राज्य भाग्य करेंगे। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ साक्षात्कार होता है, इस समय तुम बच्चों को एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार होता है। जानते हो हम ये बनेंगे, बच्चों को भूल जाता है इसीलिए बैज दिए जाते हैं। हाँ, टीचर्स को भी बैज कौन सा मिलता है, लक्ष्मी नारायण का, ये हमारा लक्ष्य है। भाइयों को कौन सा, समर्पित भाइयों को मिलता है ना श्री कृष्ण का बैज। तो बाबा कहते हैं तो एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार होता है, जानते हो हम ये बनेंगे तो बैज मिलता है, वो तो बच्चों को भूल जाता है इसीलिए बैज दिया जाता है। तो कई तो बैज ही भूल जाते हैं, ये तो याद के लिए हमेशा होना चाहिए, टीचर्स को तो ज़रूर होना चाहिए। हाँ, सब टीचर्स को बैज है, सबको है, हाथ उठाओ, सब ने लगाया हुआ है। हाँ देखो, कोई कोई ने नहीं भी लगाया, भूल गए होंगे। और भाइयों को भी बैज है, भले शिव बाबा का ही बैज सही, सबको बैज है। हाँ देखो, ये आगे वाले को बैज नहीं है। हाँ, कईयों को नहीं। तो बाबा कहते हैं भूल जाता है, इसलिए बैच दिया जाता है, एम ऑब्जेक्ट भूल जाते हैं। अभी हम बेहद के बाप के बच्चे बने हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए, ये तो घड़ी घड़ी पक्का कर देना चाहिए। परंतु माया ऑपोजिशन में है तो वो खुशी भी उड़ा देती है, ऑपोजिशन में है ना, वो विरोध करती है तो खुशी भी को भी उड़ा देती है, खुशी भी उड़ जाती है। बाप को याद करते रहेंगे तो नशा रहेगा, बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर माया भुला देती है। नशा चलता चढ़ता है, बाबा याद दिलाते तो नशा चढ़ता है, फिर माया भुला देती है तो फिर कुछ न कुछ विकर्म हो जाता है, माया ने भुलाया तो विकर्म हो जाता है। तुम बच्चों को स्मृति आई है, हमने 84 जन्म लिए हैं, और कोई 84 जन्म नहीं लेते, केवल देवताएं ही 84 जन्म लेते हैं। तो ये भी समझना है, जितना हम याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। और फिर एक तो याद करना है ऊंच पद पाने के लिए, दूसरा और फिर आप समान भी बनाना है, तो ऊंच पद पाना है तो आप समान भी बनाना है, प्रजा बनानी है, तभी तो राजा बनेंगे ना, प्रजा बनानी है। चैरिटी बिगिन्स एट होम, कहाँ से सेवा शुरू करेंगे, पहले अपने परिवार से। चैरिटी बिगिन्स एट होम, तीर्थों पर भी पहले खुद जाते हैं फिर मित्र संबंधियों आदि को भी इकट्ठे ले जाते हैं, पहले खुद तैयारी करते कहाँ जाएंगे, अपना बनाते रूट, फिर अपना वो संगठन तैयार करते हैं, उनको साथ में ले जाते हैं, फिर मित्र संबंधियों आदि को भी इकट्ठा ले जाते हैं। तो तुम भी प्यार से सबको समझाओ, सब नहीं समझेंगे, बाबा जानते हैं सब नहीं समझेंगे, एक ही घर में बाप समझेगा तो बच्चा नहीं समझेगा। लौकिक में पिता बच्चे को समझाने की कोशिश भी करे पर पिता नहीं बच्चा नहीं समझता है, तो बाबा कहते हैं माँ बाप कितना भी बच्चों को कहेंगे पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, फिर भी मानेंगे नहीं बच्चे। हर एक के घर की ये प्रॉब्लम तो होगी, बच्चे मानते नहीं हैं, कोई मानता नहीं है। तो बाबा कहते हैं पुराने एक ही घर में बाप समझेगा तो बच्चा नहीं समझेगा, माँ बाप कितना भी बच्चों को कहेंगे पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, फिर भी मानेंगे नहीं, तंग कर देते हैं। लौकिक बच्चे माँ बाप को तंग कर देते हैं। जो यहाँ का सैपलिंग होगा वही फिर आकर समझेंगे, बाबा जानते हैं बच्चे भी जानते हैं, सब तो समझेंगे नहीं, जो यहाँ का सैपलिंग होगा वो फिर आकर समझेंगे। इस धर्म की स्थापना देखो कैसे हो रही है, नया सैपलिंग लग रहा है, नया कलम लग रहा है, तो कैसे ये स्थापना हो रही है। और धर्म वालों की सैपलिंग नहीं लगती है, अंतर क्या है, यहाँ देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगती है, पुराने से ही नया बनते हैं, पर और धर्म वाली आत्माएं तो ऊपर से नीचे आती है तो उनकी सैपलिंग नहीं कहेंगे, वो पुरानी झाड़ से ही एक शाखा निकल आती है। तो बाबा कहते हैं उनकी सैपलिंग नहीं कहेंगे, यहाँ तो सैपलिंग लगाई जाती है, सैपलिंग जोड़ते हैं, फिर वो पेड़ के साथ जोड़ते हैं और उसमें मिट्टी डालते हैं, उसको फिर पानी देते हैं तो वो हरा भरा हो जाता है और पुराना जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो बाबा कहते हैं जो यहाँ का सैपलिंग होगा वही फिर आकर समझेंगे। इस धर्म की स्थापना देखो कैसे होती है, और धर्म वालों की सैपलिंग नहीं लगती है, वो तो ऊपर से आती है आत्माएं, उनके फॉलोअर्स भी आते रहते हैं, सब ऊपर से आते हैं, ये तो स्थापना करते हैं और फिर सबको पावन करते हैं। हाँ, स्थापना करते हैं फिर पावन बनाकर ले जाते हैं, इसलिए उनको सतगुरु लिबरेटर कहा जाता है। सतगुरु लिबरेटर एक ही है क्योंकि वो आकर पावन बनाकर घर ले जाते हैं। सच्चा गुरु तो एक ही है, मनुष्य कभी किसी की सदगति कर न सके, सदगति दाता है ही एक, उनको ही सतगुरु कहा जाता है। भारत को सच खंड भी वही बनाते हैं, रावण झूठ खंड बना देता है और बाप के लिए भी झूठ। दुनिया में रावण ने कितना सबको झूठा बना दिया है, सबके लिए झूठ बोलते हैं, बाप के लिए भी झूठ, देवताओं के लिए भी झूठ कह देते हैं। हाँ, कितनी ग्लानी कर दी है। तब बाप कहते हैं हाँ झूठ ही झूठ है सब जगह, इसीलिए हाँ क्या करो, हियर नो ईविल, सी नो ईविल, टॉक नो ईविल। इसको कहा ही जाता है वैशालय, सतयुग है शिवालय। मनुष्य समझते थोड़ी है कि ये वैशालय है, वो तो अपनी मत पर ही चलते हैं। कितना लड़ना झगड़ना चलता रहता है, बच्चे माँ को पति स्त्री को मारने में देरी नहीं करते हैं, एक दो को काटते रहते हैं। क्या करते हैं कलयुग में, एक दो को काटते रहते हैं। बच्चा देखता है बाप के पास बहुत धन है, देता नहीं है, तो मारने में भी देरी नहीं करते, पिता को मार डालने में भी देरी नहीं करते, क्योंकि पिता देता नहीं है, तो मारने में भी देरी नहीं करते। कैसी गंदी दुनिया है। अभी तुम क्या बन रहे हो, दुनिया तो गंदी है पर तुम क्या बन रहे हो, ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। तुम तो सिर्फ कहते थे भक्ति मार्ग में, हम केवल कहते थे क्या, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, बस ये कहा। ऐसे थोड़ी कहते थे, क्या नहीं कहते थे, बस पावन बनाओ, दया करो, रहम करो, कृपा करो, पर किया क्या, कभी नहीं कहा कि आकर के हमको विश्व का मालिक बनाओ, कभी ऐसे कहा क्या, कभी नहीं कहा। पता ही नहीं था कि भगवान हमें कोई विश्व का मालिक भी बनाएंगे। तो बाबा कहते ऐसे थोड़ी कहते थे कि विश्व का मालिक बनाओ, गॉड फादर है तो हेवन स्थापन करते हैं ना, गॉड है जो हेवन, गॉड फादर है तो हेवनली गॉड फादर कहते हैं, तो हेवन स्थापन करते हैं, तो हम हेवन में क्यों नहीं हैं। फिर रावण तुमको नर्कवासी बनाते हैं, थे ज़रूर हेवन में, हेवनली गॉड फादर ने हेवन में भेजा था, परंतु फिर हेल में क्यों आ गए, तो हेल में क्यों आए, क्योंकि रावण ने नर्कवासी बना दिया। कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह देते देने से भी भूल गए हैं कि हम तो हेवन में थे। तो बाप कहते हैं तुम हेवन के मालिक थे, अब फिर चक्र लगाए हेल के मालिक बने हो। अभी फिर बाप तुमको हेवन का मालिक बनाते, पहले स्वर्ग के मालिक थे, फिर नर्क के मालिक बने, और फिर स्वर्ग का मालिक बाबा बनाते हैं। कहते हैं वो स्वर्ग का मालिक बनाने लिए बच्चों को बाबा क्या कहते हैं, कहते हैं मीठी आत्माएं। शिव बाबा कहते हैं मीठी आत्माएं, बच्चे बच्चों बाप मीठी आत्माएं बच्चों, बाबा हमेशा बच्चों बच्चों कहते थे, मीठी आत्माएं बच्चों, बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तमो प्रधान बनने में आधा कल्प लगा, फिर बाबा करेक्ट करते नहीं, आधा कल्प नहीं, कितना लगा समय, तमो प्रधान बनने में आधा कल्प लगा, फिर बाबा कहते हैं बल्कि सारा ही कल्प कहेंगे, क्योंकि धीरे 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 तो तरते हैं ना, तो सारा ही कल्प लगा तमो प्रधान बनने में, बल्कि सारा ही कल्प कहें, क्योंकि कला तो कम होती जाती है, इस समय कोई कला नहीं है, पवित्रता की कोई कला नहीं है। कहते हैं मैं निर्गुण हारे में को गुण नाहीं, इसका अर्थ भी कितना क्लियर है कि मेरे अंदर अभी कोई गुण है ही नहीं, कहाँ हम सर्वगुण संपन्न थे और कहाँ कोई गुण नहीं। यहाँ फिर निर्गुण बालक की संस्था भी है, बालकों में कोई गुण नहीं है, ऐसे होंगे कुछ ऑर्फनेज होगा, कोई ऐसे माँ बाप ने पता नहीं क्या होता उस निर्गुण बालक संस्था है दिल्ली में, मुझे किसने कहा दिल्ली में संस्था है जिसका नाम है निर्गुण बालक। तो बाबा कहते हैं बालकों में कोई गुण नहीं है, नहीं तो बालक को तो महात्मा से भी ऊंचा कहा जाता है, क्योंकि बालक बच्चा है तो प्योर है, कितना उसको तो विकारों का पता ही नहीं है। तो बाबा कहते नहीं तो बालक को तो महात्मा से भी ऊंचा कहा जाता है, उनको तो विकारों का भी पता नहीं है, बालकों को बच्चों को। महात्माओं को तो विकारों का पता रहता है, तो अक्षर भी कितने रॉन्ग बोलते हैं। निर्गुण बालक, बालक तो हमेशा शुद्ध पवित्र होता है, उनको तो विकारों का पता ही नहीं। तो बाबा कहते तो अक्षर भी कितने रॉन्ग बोलते हैं, माया बिल्कुल अनराइटियस बना देती है। गीता पढ़ते भी हैं, कहते भी हैं, गीता में आता है भगवानु वाच काम महाशत्रु है, ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, फिर भी पवित्र बनने में कितने विघ्न डालते हैं। बच्चा शादी नहीं करता तो कितना बिगड़ते हैं। हाँ, कई आते हैं यंग कुमार, कहते बहन जी हम क्या करें, यहाँ माँ बाप ज्ञान में नहीं है, तो बच्चे ज्ञान में चल पड़े तो फिर उनको लगता है क्या करें। बच्चा शादी नहीं करता तो कितना बिगड़ते हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चों को श्री मत पर चलना है, जो फूल बनने के नहीं होंगे, हाँ फूल उनको नहीं बनना है, कितना भी उनको समझाओ कभी नहीं मानेगा। अब फूल बनना ही नहीं है, देवता बनना ही नहीं है, पवित्र रहना ही नहीं है, तो कितना भी समझाओ तो भी नहीं समझेगा, नहीं मानेगा। कहाँ बच्चे कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे तो माँ बाप कितना अत्याचार करते हैं। कहाँ माँ बाप ज्ञान में चलते हैं, बच्चों को कहेंगे बच्चे हाँ अपना जीवन शुद्ध पवित्र बनाओ, नहीं मानते हैं। कहाँ बच्चे ज्ञान में चलते हैं, माँ बाप नहीं मानते हैं ना, अत्याचार करते हैं। तो माँ बाप कितना अत्याचार करते हैं। तो बाप कहते हैं जब ज्ञान यज्ञ रचता हूँ, बाबा ज्ञान यज्ञ जब रचते हैं तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। यज्ञ में विघ्न बहुत, असुरों ने बहुत विघ्न डाले। तो यज्ञ ज्ञान यज्ञ रचता हूँ तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। तीन पैर पृथ्वी के भी नहीं देते, उस समय तो ये हालत थी। हाँ ब्रह्मा कुमारियों को कुछ नहीं देना है, इनको मकान नहीं देना है, इनको कुछ नहीं देना है। और अभी तो खुद ऑफर कर रहे हैं, लो आप लो, हमारी जमीन पड़ी है आप लो। तो देखो कितना समय बदल गया ना। तीन पैर पृथ्वी के भी नहीं देते, तुम सिर्फ बाप की मत पर याद कर पवित्र बनते हो। क्या अंतर हो गया, तुम याद बाबा की मत पर चल, याद कर पवित्र बनते हो। तो देखो अभी प्रकृति तुम्हारी दासी बनती जाती है, और कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे तुम आत्माएं इस शरीर में अवतरित हो, वैसे बाप भी अवतरित है, हम भी अवतार है। शिव बाबा ही केवल अवतार नहीं, हम भी अवतरित हुए हैं ना परम धाम से, तो हम आए हैं। भले हम सत्युग आदि में आए, बाबा भी आए हैं, पर अवतरित तो बाबा भी हुए हैं, हम भी हुए हैं परम धाम से। जैसे तुम आत्मा इस शरीर में अवतरित हो, वैसे बाप भी अवतरित है। फिर कच्छ अवतार मच्छ अवतार कैसे हो सकते हैं, बाप अवतरित है ना, तो अवतरित हो तो कच्छ में थोड़ी आएंगे, कछुए में थोड़ी आएंगे, मच्छ माना मछली में थोड़ी आएंगे। कच्छ मच्छ अवतार, वारा अवतार, वारा अवतार माना ये सी यो क्या बोलते हैं किसको, पिग, हाँ सुअर, वारा अवतार वो सुअर का अवतार। बाबा कहते ऐसे कैसे हो सकता है, कितनी गाली देते हैं। कहते हैं फिर क्या गाली और देते हैं, कंकड़ कंकड़ में भगवान। उस समय एक फिल्म निकली थी, कण कण में भगवान फिल्म आई थी उस समय की बात। तो बाबा कहते हैं उस समय उसमें गीत भी बजाया, वो गीत भी था उस फिल्म में, कंकड़ कंकड़ से मैंने पूछा शंकर मेरे कहाँ है। तो कंकड़ कंकड़ से, कंकड़ माना पत्थर, तो पत्थर पत्थर से मैंने पूछा शंकर मेरे कहाँ है। तो बाबा कहते हैं फिर कहते हैं कंकड़ कंकड़ में भगवान है। बाप कहते हैं मेरी और देवताओं की ग्लानि करते हैं तो मुझे आना पड़ता है, आकर तुम बच्चों को फिर से वर्षा देता हूँ। मैं वर्षा देता हूँ और रावण श्राप देता है। कहाँ बाबा वर्षा देते हैं और कहाँ रावण श्राप देते हैं, यह खेल है। बाबा वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं, ये खेल है। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो समझा जाता है कि इनकी तकदीर इतनी ऊंच नहीं है। तकदीर वाले तो सवेरे सवेरे उठकर याद करेंगे, बाबा से बातें करेंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो, खुशी का पारा भी चढ़ेगा। जो पास विद ऑनर होते हैं वही राजाई के लायक बन सकते हैं। कौन राजाई के लायक बन सकते हैं? जो पास विद ऑनर होते हैं। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण नहीं राज्य करते हैं, उनकी डिनास्टी है, रावरी राजधानी है। अब बाप कहते हैं तुम कितना स्वच्छ बुद्धि बनते हो। इसको कहा जाता है कैसे बनते हैं स्वच्छ बुद्धि, बाबा की ये श्रीमत लेकर के। तो इसको कहा जाता है, ये श्रीमत जो बाबा की मुरली से मिलती है, तो इसको क्या कहा जाता है? सत्संग। ये सत्संग है ना, सत्य का संग। सत्संग तो एक ही होता है, जो बाप सच्ची सच्ची नॉलेज दे, सच खंड का मालिक बनाते हैं। तो कहाँ बैठे हम? सत्संग में, जहाँ सच्ची सच्ची नॉलेज बाप से ले, सच खंड का मालिक बनते हैं। कल्प के संगम पर ही सत का संग मिलता है। स्वर्ग में कोई भी प्रकार का सत्संग होता नहीं है, वहाँ जरूरत ही नहीं है। सत के संग से ही तो स्वर्ग में आए हैं, तो वहाँ सत्संग की जरूरत ही नहीं है। स्वर्ग में कोई भी प्रकार का सत्संग नहीं होता है। अभी तुम हो रूहानी सेल्वेशन आर्मी, नया टाइटल बाबा देते हैं, तुम हो रूहानी सेल्वेशन आर्मी। तुम विश्व का बेड़ा पार करते हो, तुमको सेल्वेज करने वाला, पार करने वाला, श्रीमत देने वाला बाप है। तुम्हारी महिमा बहुत भारी है, तुम्हारी महिमा भी बहुत भारी है, बाप की महिमा भी भारी है। और किस किस की महिमा भारी है? बाप की महिमा भारी है, बच्चों की महिमा भारी है, और किसकी महिमा भारी है? भारत की महिमा भारी है। और किसकी महिमा? जो ज्ञान बाबा देते हैं श्रीमद् भगवद गीता, वो भगवद गीता की भी महिमा बहुत भारी है। तो कितनी महिमा? जो भगवान के साथ संबंधित बातें हैं उनकी महिमा बहुत भारी है। तो भारत की महिमा अपरम अपार है, तुम बच्चों की भी महिमा अपरम अपार है, तुम ब्रह्मांड के भी और विश्व के भी मालिक बनते हो। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ, पूजा भी तुम्हारी डबल होती है। मैं तो देवता बनता नहीं हूँ जो डबल पूजा हो। तुम्हारी तो पूजा देवता रूप में भी होती है और निराकार रूप में भी होती है। बाबा तो देवता बनता नहीं है, तो उनकी सिंगल पूजा होती है। पूजा भी तुम्हारी डबल होती है। मैं तो देवता नहीं बनता हूँ जो डबल पूजा हो। तुम्हारे में भी नंबर वार समझते हैं और खुशी में आकर पुरुषार्थ करते हैं। पढ़ाई में फर्क कितना है? पढ़ाई वही है, पढ़ाने वाला भी वही है, लेकिन हर एक अपनी यथा योग्यथा शक्ति धारण करते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है, वहाँ वजीर होता नहीं। लक्ष्मी नारायण जिनको भगवान भगवती कहते हैं, वो फिर वजीर की राय लेंगे क्या? क्या ज़रूरत है उनको राय लेने की? भगवान भगवती उनको कहते हैं। जब पतित राजाएं बनते हैं तब फिर वजीर आदि रखते हैं। अभी तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य। तो तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से क्या है? वैराग्य। ज्ञान भक्ति और वैराग्य। ज्ञान सिर्फ रूहानी बाप सिखलाते हैं और कोई सिखला न सके। बाकी जो भी सिखाते सब भक्ति सिखाते, ज्ञान केवल रूहानी बाप ही सिखाते। बाप ही पतित पावन सर्व का सदगति दाता है। हाँ अच्छा, सबका सदगति दाता एक बाप है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, बाप की याद के साथ साथ, और क्या करना है? बाप की याद के साथ साथ आप समान बनाने की भी सेवा करनी है। चैरिटी बिगिन्स एट होम, सबको प्यार से समझाना है। चैरिटी बिगिन्स एट होम माना दान करना है तो पहले घर वालों को करना है, सबको प्यार से समझाना है। दूसरा, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। हियर नो ईविल, सी नो ईविल, टॉक नो ईविल। उस बेहद बाप के बच्चे हैं, वो हमें कारून का खजाना देते हैं, इसी खुशी में रहना है। वरदान, हर संकल्प बोल और कर्म को फलदायक बनाने वाले रूहानी प्रभावशाली भव। हर संकल्प बोल और कर्म तीनों को फलदायक बनाने वाले रूहानी प्रभावशाली भव। जब भी किसी के संपर्क में आते हो तो उनके प्रति मन की भावना, स्नेह, सहयोग और कल्याण की प्रभावशाली हो, हाँ ये भावना हो। हर बोल किसी को हिम्मत उल्लास देने के प्रभावशाली हो। साधारण बातचीत में समय न चला जाए। ऐसे ही हर कर्म फलदायक हो, चाहे स्व के प्रति चाहे दूसरों के प्रति। आपस में भी हर रूप में प्रभावशाली बनो, सेवा में रूहानी प्रभावशाली बनो, तब बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन सकेंगे। स्लोगन, ऐसी शुभ चिंतक मणि बनो, शुभ चिंतक मणि बनो, जो आपकी किरणें विश्व को रोशन करती रहे। ऐसी शुभ चिंतक मणि बनो। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो के अंतर्गत समय प्रमाण शीतलता की शक्ति द्वारा हर परिस्थिति में अपने संकल्पों की गति को, बोल को शीतल और धैर्यवत बनाओ। यदि संकल्प की स्पीड फास्ट होगी तो बहुत समय व्यर्थ जाएगा, कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। इसलिए शीतलता की शक्ति धारण कर लो तो व्यर्थ से बच जाएंगे। यह क्यों, क्या, ऐसा नहीं, वैसा, इस व्यर्थ की फास्ट गति से छूट जाएंगे। दीदी, दीदी की विशेषताएं, आज 18 जनवरी है। ऑल राउंड एक्यूरेट और अलर्ट थी दीदी हमारी, ऑल राउंड एक्यूरेट और अलर्ट। दीदी का ध्यान यज्ञ की ऑल राउंड सेवा पर रहता। वे मुरली क्लास के पश्चात स्वयं भंडारे में चक्कर लगाती। रोज दीदी मुरली क्लास के बाद भंडारे में जाती थी और कुछ समय सबके साथ बैठकर सब्जी काटने में मदद करती। एक्यूरेसी उनके जीवन में कूट कूट कर बाबा ने भरी थी। एक्यूरेसी, समय पर मुरली में आना। हाँ बताया ना कि वो देखती थी दादी जी का क्या कि लाइट अभी ऑन है, तो फटाफट भागती थी कैसे मैं दादी जी के पहुँचने से पहले मैं पहुँचूँ, क्योंकि दादी मुरली सुनाती थी तो पहले मैं स्टूडेंट बन के पहुँचूँ। हाँ ये उनका बहुत ध्यान रहता था। एक्यूरेसी उनके जीवन में कूट कूट कर बाबा ने भरी थी। वे बाबा के अव्यक्त होने के बाद सभी पत्रों का जवाब खुद बैठकर लिखती या लिखवाती। हाँ मुन्नी बहन दीदी की राइट हैंड थी, पत्र मुन्नी बहन लिखती थी, दीदी मुन्नी बहन को लिखाती थी और फिर स्टॉक भी वही संभालती थी। और दीदी स्टॉक मुख्य तो दीदी थी, दीदी सब स्टॉक देखती थी। दादी जी का फिर दूसरा कारोबार था एडमिनिस्ट्रेशन का, लेकिन घर में स्टॉक्स का देखना। फिर संतरी दादी थी दीदी के साथ, फिर संतरी दादी थोड़ी बीमार हुई तो फिर मुन्नी को रखा, मुन्नी दीदी को रखा स्टॉक में। तो मुन्नी दीदी बताती है ना कि जब बाबा के पास में गई तो बाबा ने मुझे कहा कि जाओ बच्ची ये स्टॉक देख कर आओ, ये बाबा का स्टॉक है, इनमें से आपको जो सौगात चाहिए वो लेकर आओ, जो सौगात चाहिए वो लेकर आओ। तो वो गई बाबा की आज्ञा अनुसार और गई कि केवल एक रुमाल लेकर आई बस। तो बाबा ने कहा इतना स्टॉक पड़ा है तुमने एक रुमाल ही लिया? बाबा ने उसने कहा बाबा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो फिर बाबा ने महसूस किया कि ये बहुत ही ईमानदार है, बहुत ईमानदार है, एक रुमाल ही केवल लिया, जबकि बाबा ने उनको कहा कि स्टॉक है जो चाहिए ले लो। तो उनको फिर संतरी दादी का साथी बना दिया और तब से वो बाबा के समय से फिर स्टॉक संभालती रही। तो देखो अभी भी आज मधुबन वालों को मिलने वाला है, कपड़े मिलेंगे, इतने भाई बहने हैं मधुबन सा, क्या नहीं है, हजारों है भाई बहने, सबके कपड़े आज देंगे ना मधुबन पांडव भवन और ज्ञान सरोवर और जो यहाँ पर है, फिर कल शांतिवन वालों को देंगे। तो बाबा के तो कैसी थी हमारी दीदी? तो दीदी से ही सब सीखी, पत्र भी लिखाती थी और मुनि इतनी एक्यूरेट थी, मुनि बहन बिल्कुल एक्यूरेट पत्र फटाफट लिखती थी। तो हाँ कभी तो सभी पत्रों का जवाब खुद बैठकर लिखती या लिखवाती, कभी दीदी ने कोई भी सेवा पेंडिंग नहीं रखी कि चलो कल करेंगे, नहीं, जो सेवा जब जरूरी है उसे उसी समय अलर्ट बन करके की और कराई। हमें भी ऑलराउंडर बन हर सेवा में एक्यूरेट और अलर्ट रहना है, दीदी की विशेषताएं हैं तो हम भी ऐसे बने। चलो ओम शांति, ओम शांति। और तो आप सभी को मालूम ही है कि सभी भाई बहने पहले जो भी समर्पित भाई बहने हैं वो उनके लिए विशेष सूचना है कि सभी समर्पित भाई डायमंड हॉल के बहनों की तरफ गेट नंबर 14 से प्रवेश करेंगे आपके कपड़े लेने के लिए। 14 नंबर गेट डायमंड हॉल का, उसमें उससे प्रवेश कर अपना कपड़ा लेकर कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठेंगे। इस बार डायमंड हॉल में पीछे की तरफ सारे कपड़े तैयार किए गए हैं, तो वहां जाकर पहले कपड़ा लेंगे 14 नंबर गेट बहनों की तरफ, अपना कपड़ा लेकर कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठेंगे। सभी बहनों को डायमंड हॉल के बहनों के तरफ गेट नंबर 12 से प्रवेश करना है। मधुबन निवासी बहनों को 12 नंबर गेट और भाइयों को 14 नंबर गेट से प्रवेश करना है, जहां आदरणीय मुनि दीदी से मिलेंगे। पन्ने वाले भाई बहनों को कॉन्फ्रेंस हॉल में कपड़ा दिया जाएगा, जो पन्ना देते हैं पुराने भाई बहने उनको कॉन्फ्रेंस हॉल में कपड़ा दिया जाएगा। कृपया सभी भाई बहने अपने साथ स्मार्ट कार्ड अवश्य लेकर के आए। तो 10 बजे से जाएंगे और अपना
9 बजे से गाड़ियां मिलेगी
नीचे जाने लिए,
ब्रह्मा भोजन भी करके
आएंगे। चल ओम शांति।